ओम शांति। हम सभी बहुत दिल की गहराइयों से हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भाई आधार मुहूर्त डॉक्टर बनारसी भाई जी और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का दिल से वेलकम करते हैं। तो आज हम सभी दादियों के अनुभव की बहुत सुंदर प्रेरणाएं आपसे प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर बनारसी भाई जी का एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। वर्तमान समय भाई साहब जो राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है उनके मेडिकल विंग के आप सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस मेडिकल विंग ने 50 से अधिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस माने जिसमें मेडिकल कॉलेजेस के डायरेक्टर्स डीन एमडीज एक ऐसी लहर भाई साहब की हमने देखी है विंग्स की सेवाओं में मेडिकल से जुड़े हुए ऐसे एमडी आपने पता नहीं कैसे किस प्यार से उनको जीता था कि वो कहते हैं वो 8-8 लोगों के साथ रूम में रहने को तैयार हैं एमडीस लेकिन आना चाहते हैं। ये आपकी एक सुंदर बाबा के प्रति भावनाएं भरने की जो आप में कला है वो हमने देखी। आप जो शांतिवन में एवरेली हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च फाउंडेशन के आप ट्रस्टी कोषाध्यक्ष हैं, पूरे भारत में मेडिकल विंग के द्वारा मेरा भारत स्वस्थ भारत गांव गांव में जो सेवाएं हुई बाबा की जो प्रत्यक्षता हुई वो बहुत सराहनीय सेवाएं। तो बहुत दुआएं जमा है भाई साहब के खाते में तो हम उनका वेलकम करते हैं। और हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जो मरीजों के बीच मैंने डॉक्टर सतीश गुप्ता जी एज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है ना हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं अभी ट्रॉमा में है उनकी सेवाएं। और भाई साहब एस्कॉर्ट में माना दिल्ली में आप बहुत सुंदर बहुत ऊंचे पद पर आप कार्यरत थे लेकिन कैसे मैं हार्ट के पेशेंट्स को बिना एंजियोग्राफी बिना एंजियोप्लास्टी के ठीक करूं ये भावना लेकर आप 95 में आप दिल्ली से सब कुछ समेट कर आप मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल में आए और बहुत सुंदर कैट का प्रोजेक्ट चालू किया जिसमें हार्ट के पेशेंट जिनको डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी के लिए कहा हुआ है उनको केवल राजयोगा मेडिटेशन डाइट और एक्सरसाइज से कैसे उनकी आर्टरी ओपन हुई ये ऐसे हजारों लाभान्वित हुए हैं आपसे। और हमने तो कैट के बहुत से पेशेंट्स के हमने इंटरव्यू लिए 98 से ये कैट प्रोजेक्ट चालू हुआ तो हर एक दिल से भाई साहब के लिए मैं बड़ा ताजुब होता था। हर एक के मुख से यही निकलता था कि हमारे लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता भगवान है। और कैसे आप देखिए शाम का एक सेशन होता था अब अनाउंस हो रहा है कि आज आप सबकी एंजियोप्लास्टी होनी है आपका बाईपास सर्जरी होना है सॉरी आपकी बाईपास सर्जरी होनी है शाम को 6 से 8 फलाने हॉल में आप आइए। हम लोग भी पहली बार उस तरह से क्यूरियोसिटी थी तो कैसे योग के द्वारा उनको श्रेष्ठ संकल्प देकर कैसे आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित करके कैसे मैं खुद अपनी आर्टरी को ओपन करूंगी ये वंडर हमने देखा भाई साहब के द्वारा। बाबा की मदद बहुत रही उनको। तो आइए हम सब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर बनारसी भाई से क्योंकि आप दादियों के बहुत क्लोज रहे हैं क्योंकि सारा स्वास्थ्य जो है वो सबका चाहे दादियों का वरिष्ठ भाइयों का वो आपके ही हाथों में सेफ है। तो भाई साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दादियों ने हमने देखा कि दधीती ऋषि मिशल जैसे उन्होंने हड्डियां अपने यज्ञ में दी और दादियां कैसे भी प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के द्वारा या एक शरीर के द्वारा कोई भी पेपर दादियों के आए दादियों ने बहुत योग युक्त और बहुत कभी लगा ही नहीं कि दादी कोई ये प्रकृति का पेपर शरीर का पेपर जैसे फेस कर रही सदा वो हल्के रहे दादियां। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव दादियों के सुनाएं ताकि हम भी उस तरह से पेपरों में हम अचल अडोल रह सके।
ओम शांति। जब दादियों के साथ थे तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि एकदम नजदीक थे बहुत सारी विशेषताएं हम देखते हुए भी नहीं अनुभव कर पाते थे। आज अनुभव हो रहा है कि हमारी दादियां बाबा मम्मा ये कहीं वतन से आए हुए विशेष विशेष आत्माएं थी जो हम लोगों के साथ इस शरीर में वो प्रवेश होकर के पार्ट प्ले करके वतन में फिर वापस चली गई और वहां से सूक्ष्म रूप में हम सबकी परवरिश कर रही है, जो हम सबको पता है। हम सबका सबका यही अनुभव है कि यज्ञ को दादियां बाबा मम्मा चला रहे हैं, नहीं तो प्रोग्राम दादी बड़ी दादी दादी प्रकाशवाणी के प्रोग्राम बनता था। हम 75-76 की बात सुना रहे हैं। तो दादी को बाहर जाने का गर्मी के दिन होती थी भाई, कोई खास एक्टिविटी नहीं होती थी, तो दादी का प्रोग्राम बनता था कि दादी कहती थी कि हम बाहर फिर सेवा करके आए। तो पहले कुछ भी होता था तो मीटिंग होती थी, तो हम लोग मीटिंग बोलते नहीं दादी आपको बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिन में विजिटर आते हैं, गर्मी के पहाड़ पहाड़ी है तो पहाड़ पर लोग घूमने आते हैं, तो संस्था में आते हैं तो हेड से ही मिलेंगे ना। तो हम लोग दादी को कहते नहीं दादी आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोई आता है, जजे जाते हैं और भी मिनिस्टर आते हैं, वीआईपी आते हैं, हम किससे मिलाएंगे? पांडव भवन तो हम दिखा देंगे। केवल उन दिनों में पांडव भवन ही था, ज्ञान सरोवर नहीं, शांति वन नहीं, ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, एक पांडव भवन था। तो दादी को प्रोग्राम हम लोग बाहर नहीं बनने देते थे, दादी नहीं जा पाती थी। दादी सबसे मिलती थी, सबको भाषण देती थी, सबको रिफ्रेश करके, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी वीआईपी हो, कोई भी हो, सबको समान रूप से मिलती थी। आज हम देखते हैं तीनों कैंपस में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि कोई बड़े नहीं होते हैं। मैंने देखा 82, 83, 84 पीस ऑफ माइंड कॉन्फ्रेंस बहुत खर्चा किया जाता था, पूरे माउंट आबू का होटल बुक कर लिया जाता था, क्योंकि पांडव भवन था, ज्ञान सरोवर नहीं था और कोई जगह नहीं था, और उसमें 1000-1500 भाई बहने आते थे तो कहां ठहरेंगे, तो होटल में ठहराते थे। और वर्गीकरण के मीटिंग होती थी, भाई डॉक्टर का वर्कशॉप है, ये इंजीनियर का वर्कशॉप है, उसमें तो पीस ऑफ माइंड में सभी आते थे। उन दिनों में कौन डॉक्टर आए थे, मुझे याद है 8-10 होंगे, कोई होम्योपैथी, कोई आयुर्वेदिक, कोई नेचर क्योर के डॉक्टर, सिंपल वेटनरी के डॉक्टर। और आज के डेट में भाई साहब ने कहा कि आज के डेट में कौन आते हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट, मेडिकल कॉलेज के डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, एमडीएमए से कम को अलाउ नहीं करते हैं। और कोई भी दादी नहीं होती है, वो रिफ्रेश होके जाते हैं। अभी हमने 25 से 28 नीचे भर्ती रखा है डॉक्टरों की, पिन ड्रॉप साइलेंस, आपको बोलना नहीं है, किसी को बोलने की आदत है तो बटी में नहीं आए, बोलना नहीं है, संपन्नता से संपूर्णता के तरफ थीम है भट्टी का। हम कैसे ब्रह्मा बाबा के तरह, दादियों के तरह संपन्न बने? तो कौन चला रहा है? हमारा बाबा चला रहा है, दादियों की ब्लेसिंग चल रही है, तो दादियां भले शरीर में नहीं है लेकिन उनकी सेवाएं उपस्थित है तीनों कैंपस में, सभी जगह, देश विदेश सब जगह बहुत सेवा चल रही है। पहले लोग कहते थे नहीं दादी कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी तो कैसे कॉन्फ्रेंस होगा, अभी कोई भी दादी नहीं आती है और इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है, सब खुश होकर के जाते हैं, तो कैसा हुआ?
सूक्ष्म
दादियां करा रही है। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, भट्टी होती थी, दादी लास्ट में टोली खिलाती थी, दृष्टि देती थी, लोग रिफ्रेश होते थे। अभी बिना दादियों के दृष्टि के सब रिफ्रेश हैं या नहीं है, अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है? तो दादियां सूक्ष्म में सबको दृष्टि दे रही है, भरपूर कर रही है। तो अब हम देखें कि अप्रैक्टिकल में दादियां कैसे हड्डी हड्डी सेवा दिया। शुरुआत की बात है, बेगरी पार्ट की बात है। जयंती बहन सुना रही थी कि जब वो छोटी थी, पूना में जानकी दादी थी, छोटी थी तो उस तरह के छोटी छोटी कन्याएं सेंटर पर कोर्स करने के लिए आए, तो दादी कोर्स कराया, थोड़ा देर हो गया तो दादी अपने लिए जो खाना बनाई थी, बोली कि बच्चियों को भूख लगा होगा, चलो वो खिला देते हैं। बहने तो कन्या तो खाना खा लिया, किचन में गई तो कुछ नहीं है, अरे दादी क्या खाएगी। माने देखो त्याग, अपने लिए जीवन नहीं है कहने का भाव, नहीं तो वो कोर्स करा दिया, वो जाके बच्चियां अपने घर में खाना खाए, लोकल थी, लेकिन इतना प्यार, अपनापन, जिगरी प्यार दादियों में था। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल उस 56 की बात नहीं, दादी 84 या 85 में कब लंदन फर्स्ट टाइम गई, वहां कुछ नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, दादी वहां रोज सुबह मुरली पढ़ती थी। हम लोग अगर हो तो रिलैक्स हो जाएं कि भाई जिज्ञासु आने वाले नहीं है, तो ये ठंडी में क्यों जल्दी उठे, आराम से उठेंगे, नहाएंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे, बाद में मुरली पढ़ लेंगे, जल्दी क्या है। एक कंसेप्ट अपनी होती है। दादियों को कोई नहीं है, सुबह 3:30 बजे उठना है, याद करना है, फिर तैयार होकर के 6:30 ठंड में, दादी इतना जोर जोर से मुरली सुनाती थी जैसे कि 500 लोग बैठे हैं। और आज सचमुच लंदन में आप जाएंगे तो 500 का अंग्रेजों का क्लास है, 500 का इंडियन का अलग क्लास है, दो दो क्लास चलती है एट ए टाइम। दादियों का त्याग, हड्डी हड्डी त्याग की विशेषता। दादियों का ही नहीं, बाबा का। छोटे छोटे बच्चे आए, कोई 5 साल कोई 6 साल के बच्चे आए, बोर्डिंग बन गया, और उन बच्चों को बाबा की दृष्टि बदल गई। उन बच्चों को बाबा ने किस रूप से देखा, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ये नहीं उनको दिखाई दिया कि ये तो फलाने के बच्चे हैं, इधर उधर से बच्चे आए हैं, ये पढ़ाई इनको चलो हम आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, नहीं ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। शरीर तो वही बाबा का था जो हमारा है, उसी 5 तत्वों का बना हुआ था, लेकिन नहीं, वो शरीर में शिव बाबा प्रवेश होकर के उन छोटी बच्चों को, भाग्य को देख रहा था कि छोटे छोटे नहीं है, ये जग के पिलर हैं। तो बाबा ने छोटे बच्चों को ठाकुर की तरह पाला। मार्केट में कोई नया फ्रूट आएगा, महंगा होगा, बोले कि नहीं महंगा है भल ले आओ, हम अपने ठाकुरों को, वो दादियों को नहीं बाबा देते थे आम काट के खिलाने के लिए, खुद काटते थे, एक एक बच्चे के मुख में खिलाते थे, चाहे कोई भी फ्रूट हो। परखा तब न, गुलजार दादी हमारी अनुभव सुनाती है, छोटी सी थी तो बाबा क्या वरदान देता है, ये बच्ची का आंख बहुत सेवा करेगा, इनका मुख बहुत सेवा करेगा, दादी सुनाती थी, अभी छोटी सी बच्ची को आंख सेवा करेगा, ये कौन देख सकता है, भृगु ऋषि ही देख सकता है। तो बाबा छोटी सी आयु में देख लिया, परख लिया, ये बच्ची का आंख सेवा करेगा। बाप दादा का कितने साल पाठ चला, साकार का जितना नहीं उससे डबल ट्रिपल अव्यक्त का पाठ चला, और दृष्टि आंखों की सेवा, बाबा आंखों से दिखाई दिया ना, किसने किसने परखा, छोटी सी बच्ची में इसकी आंख सेवा करेगी, इसका मुख सेवा करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये इस दुनिया के ये लोग नहीं थे जो पार्ट प्ले करके चले गए वतन में, जाकर के हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ये उसकी शक्ति थी, अभी भी है, चला रही है। अब हड्डी हड्डी की सेवा की और बात थोड़ी और सुना दें। दादी,
कौन सी दादी?
दादी जानकी की बात सुना रहे हैं, वो तो बाबा की बात सुना दिया, गुलजार दादी की बात सुना दिया कि इतनी छोटी आयु में
जी।
तो दादी जानकी की बात सुना रहा, दादी जानकी इतना बेगरी पाठ था, कोई अहम नहीं था, उन सबको पता था घर में क्या है, कैसे घर चलता है। इकोनॉमी का अवतार, कपड़ा फटता है, कपड़ा लेना नहीं है, कपड़ा मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आप भी ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उनकी कंप्लेन गई, हमारी बड़ी दीदी कपड़ा बांटती थी, दीदी मनमोहिनी जी कपड़ा बांटती थी, जब तक थे तब तक हम लोगों को कपड़ा वही देते थे। तो उन्होंने बाबा को कंप्लेन किया, बाबा दादी जानकी, पहले दादी तो बोलते नहीं थे, सब सरीखे थे, तो जानकी कपड़ा नहीं लेती है और फटा हुआ कपड़ा वो क्या जोड़ करके, वो सिलाई करके, और वो पेवन बोलते हैं या पता नहीं कुछ बोलते हैं, मतलब उसको रिपेयर करके, चत्ती लगा करके, चत्ती लगा करके पहनती है, कपड़ा नहीं लेती है। बाबा ने कहा कि बुलाओ, बाबा दादी को बुलाए, जानकी दादी को। बाबा ने कहा बच्ची मेरा धोती फटा है, तुम मेरा धोती भी सिलाई करो, उसमें भी चत्ती लगाओ, बाबा चत्ती वाला धोती पहनेगा। क्या देखिए भविष्य कैसे भाग्य बनता है, हमारी दादियों का त्याग, दादियों का जीवन, एक एक यज्ञ के लिए, बाबा के लिए प्राण, कुछ भी हो, इतना बाबा में निश्चय कि एक बार दादी यहां संतों का कॉन्फ्रेंस होता था, दादी हरिद्वार से सब जगह से संतों को बुलाती थी और संत बहुत खुश होकर के जाते थे। लास्ट कॉन्फ्रेंस संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि दादी आप बुलाती हो, हम हरिद्वार ऋषिकेश छोड़ करके हम आ जाते हैं, अब इस बार हम हरिद्वार में कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको आना है। जी, दादी का ये स्टाइल था, जी हुजूर हम आएंगे। दादी गई हरिद्वार में, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, संत सारे बहुत आए थे, पूरे इंडिया से उन्होंने बुलाया था। दादी ने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा भाषण किया, सारे संत खुश हो गए। शाम का टाइम दादी गई, देहरादून में सेंटर था, प्रेम दीदी थी उन दिनों में, वहां रात को भोजन वगैरह करके सो गई। रात को बड़ी उम्र थी, ख्याल हुआ बाथरूम जाने का, उठी अंधेरे में गिर गई, 8 रिब्स टूट गया। तो प्रेम दीदी को उठाती है, प्रेम मेरे को थोड़ा गिर गए, थोड़ा दर्द हो रहा है। प्रेम दीदी और बोली कि भाई अभी कहां हम ले जाएं, क्या करें। फोन किया, उनको नजदीक नर्सिंग होम में दिखाया गया, फिर हम लोग वहां से अहमदाबाद से ये करके और दादी को अहमदाबाद लाए बाय एयर। दादी को लाए, शाम को 3-4 बज गया, सारी चेकिंग कराए, MRI CT सब करा दिया, डॉक्टर 8:30-9 बजे आकर के सब देख लिया, बोला कि इसका सर्जरी नहीं हो सकता है, प्लास्टर नहीं हो सकता है, क्रैप बैंडेज लगा देते हैं और दादी को 3 महीना यहां रेस्ट कराओ, बोल करके चला गया। दादी पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, तो हमने कहा कि दादी ये 8 रिब्स टूटे हुए हैं, आपको 3 महीना रेस्ट करना है, इसकी सर्जरी नहीं होती है, इसको प्लास्टर नहीं कर सकते हैं, क्रैप बैंडेज लगा दिया है। दादी बोली बस 3 महीना रेस्ट करना है, हमको ले चलो शांतिवन। अरे दादी 9 बज गया है, ये बड़ा हॉस्पिटल है, बाहर का हॉस्पिटल है, बिना डिस्चार्ज किए हुए पेशेंट को छुट्टी नहीं देते हैं, कैसे ले चले। बोलते नहीं ले चलो, अपनी एम्बुलेंस ले आओ। हम बोला कि डॉक्टर तो दादी चला गया, बोला कि सो क्या, उसको फोन करो। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर को बताया कि दादी कह रही है कि नहीं मुझे जाना है, मैं रात को नहीं रहूंगी, तो बोला कि दादी जो कहती है वही करो। तो अपनी एम्बुलेंस लाए और दादी को ले आए। 2:30 बज गया शांति वन पहुंच करके। उनकी एक ही भावना थी 25,000 बाबा से मिलने के लिए। बाबा के बच्चे 25,000 आए हैं, हम यहां हॉस्पिटल में रहूंगी तो 25,000 का संकल्प चलेगा, देश विदेश का संकल्प चलेगा, दादी हॉस्पिटल में है। और हम अपने कॉटेज में रहूंगी तो सबको रहेगा कि दादी आ गई है, भल क्लास में नहीं आ रही है लेकिन दादी यहीं है। तो बच्चों को निश्चिंत करने के लिए 8 रिब्स टूटा है, वो पेन उन्होंने नहीं देखा, वो रात को आ गई शांति बन। ये हमारी दादियों का हड्डी हड्डी जो कहा, फ्रैक्चर होने के बाद भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया और यहां आ गए।
थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रेरणा है ये हम सबके जीवन के लिए, बहुत बहुत हमें भी प्रेरित करेंगी। भाई साहब मैं अभी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि भाई साहब दादी प्रकाश मणि जी की, बाबा की तो प्रेरणा रही ये जो कैट के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन दादी प्रकाश मणि जी को भी काफी इससे बहुत आशाएं थी इस प्रोजेक्ट से, और वो भी काफी प्यार से हृदय रोगी जो भी आते थे, दिल वाले जिन्हें आप कहते हैं, हृदय रोगियों को आप दिल वाला नाम देते हैं, तो उनके प्रति उनको भी बहुत शुभ भावनाएं थी। और सबसे एक वंडरफुल ड्रामा में ये बात थी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। तो ये आपकी एक वैज्ञानिक हैं वे, और आपकी इस आध्यात्मिक थ्योरी से वो कैसे कन्विंस हुए, उनकी कोई ऐसी बातें आप हमें सुनाइए।
ओम शांति। ये बात एक्चुअली दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली में जब हमने जो पहली बार जब मैंने एक जब मुझे टचिंग हुई थी 26-27 फरवरी को 95 में, कि कैसे हार्ट के पेशेंट की बीमारी होती है और कैसे खुल सकती है राजयोग मेडिटेशन से, तो फिर मैंने एक जगह डॉक्टर से गेट टुगेदर में एक भाषण दिया था स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज के ऊपर, कि तनाव के द्वारा हार्ट की बीमारी कैसे होती है। नॉर्मली मैं देता रहता था उसके बाद भाषण मेडिकल को, जो अपने IMA होता है ना, IMA की गैदरिंग्स होती रहती दिल्ली में डिफरेंट एरियाज में, तो मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। तो वहां पर एक साइंटिस्ट आए हुए थे DRDO के, डॉक्टर कलाम साहब उन दिनों दिल्ली DRDO के डायरेक्टर जनरल थे। तो वो उन्होंने मेरा भाषण सुना, और एक्चुअली मैंने पहली बार ऐसा बात किया था क्योंकि एस्कॉर्ट से 3 बजे भाषण था और एस्कॉर्ट से पहुंचते मुझे 4 बज गए थे। उसमें बहन जी अनाउंस कर रही थी कि अभी डॉक्टर गुप्ता तो आए नहीं, लेट हो गए होंगे, तो अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को परमात्मा की याद में बैठते हैं, उसके बाद आप थोड़ा नाश्ता करके अपने अपने हॉस्पिटल में चले जाना। जैसे ही मैं पहुंचा तो फिर जाके बैठा, और बैठ करके मैंने जो मैंने 45 मिनट लगभग बोला होगा, और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स ने जो क्वेश्चन किए मैंने आंसर किए, सब डॉक्टर चले गए, वो DRDO वाला डॉक्टर बैठा था अंत में, सबसे अकेला ही रह गया, मैं अकेला और वो दो जने रुके। तो उन्होंने फिर कहा कि डॉक्टर साहब आप कह रहे थे ऐसा, जैसा आप कहते ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो पता नहीं मैंने क्या बोला था, क्योंकि मैं अपने होश में था ही नहीं जो मैंने बोला। पहली बार मेरे जीवन में भाषण तो बहुत किए थे, किंतु पहली बार मैंने 45 मिनट क्या बोला मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, हमने जो बोला है वो तो ठीक ही है ना, ठीक ही है, ऐसा होता है ना, वो क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है, मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं क्यों। तो मैंने उसको, तो कहते अच्छा आप ना ऐसा करें, कल हम मीटिंग करते हैं और हम शाम को, कल शाम को मीटिंग करेंगे ऐसे से, हम लोग अपने हॉस्पिटल में अपने हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मीटिंग करेंगे, वहाँ डिसाइड हो जाएगा, फिर हम इसको आगे बढ़ाएं इस बात को। तो मैंने अगले दिन मीटिंग की उनसे, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं डॉक्टर साहब हम तो कल डॉक्टर कलाम साहब से मिलते हैं, कल डॉक्टर कलाम साहब से मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कल हम वहाँ मिलने के लिए। तो डॉक्टर कलाम साहब से मीटिंग होगी, 1:30 पे मीटिंग थी, तो मैं गया मिलने के लिए। किसी बड़े ऑफिसर की मतलब वो थी, क्या बोलते हैं, उसका रिटायरमेंट हो रही थी, उसमें डॉक्टर कलाम साहब आए थे। तो डॉक्टर कलाम साहब को उन्होंने पहले शेयर कर लिया था सारी बात। तो जैसे डॉक्टर कलाम मिले तो डॉक्टर कलाम ने कहा डॉक्टर गुप्ता ये जो आप कह रहे हैं इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? तो मैंने कहा डॉक्टर सर जरूर हो सकता है। कहते डॉक्टर गुप्ता अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा DRDO आपके साथ है। मैं आपके साथ फुल मतलब जितनी मेरी एफर्ट हो सकती मैं करूंगा। तो ये बात हो गई, तो फिर मैंने प्रोग्राम बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, ग्लोबल का नाम भी बीच में डाल दिया, क्योंकि हालांकि एस्कॉर्ट्स में था तो एस्कॉर्ट का ही नाम रखा था पहले, तो बाकी डीआरडीओ का नाम रखा और एक दो हॉस्पिटल का नाम रखा, दिल्ली में एम्स का नाम रखा, फिर बना के हमने प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया तो मैंने अभी फिर यहां से बाबा रोज टचिंग करता था, नहीं बच्चे डॉक्टर त्रेन कहते थे नहीं आप दिल्ली में ही करो ये प्रोग्राम, मैं आपको पूरी मदद करूंगा, पूरा आपको फैसिलिटी देंगे। पर डॉक्टर कलाम मेरे को सुबह बाबा बोलता नहीं बच्चे चलो मधुबन जाओ माउंट आबू जाओ, ये जाके माउंट आबू में करना है। तो उधर प्रताप भाई का फोन आता था, भाई साहब ने भी एक बार फोन किया, दादी जी की भी प्रेरणा थी कि नहीं आप माउंट आबू आ जाओ, तो फिर माउंट आबू आ गया और फिर ये प्रोग्राम पास हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से 97 में पास हुआ और 97 में पास हुआ और 97 में पास होने के बाद अब जब फरवरी 98 में जब प्रोग्राम करना था, मुझे याद है 27 फरवरी को 98 को हमने पहला प्रोग्राम रखा था, उसमें सिर्फ 5 ही पेशेंट आए थे ऐसे। तो अब प्रोग्राम बनाना था, मुझे प्रोग्राम बनाना नहीं आता था, मैं कोई प्रोग्राम बनना जो बनते हैं ना डे टू डे प्रोग्राम, 7 दिन का प्रोग्राम बनाना था, मुझे तो नहीं आता था कैसे प्रोग्राम बनते हैं क्या होता है,
सहयोगी भी नहीं थे,
कोई सहयोगी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था,
डाइट न उनकी डाइट के,
तो कुछ प्रोग्राम था ही नहीं, कुछ भी था हमारे बता ही नहीं था, मैं तो एकदम रॉ आया था ना, मैं तो दिल्ली से मेडिटेशन करते थे 10 साल से, किंतु अदरवाइज 10-12 साल से मेडिटेशन करते थे, सेंटर पे जाते किंतु वैसे तो कोई टच था नहीं। तो मैं दादी जी को कहा, दादी जी मुझे तो प्रोग्राम बनाना नहीं आता, 7 दिन का प्रोग्राम मैं क्या करूं। दादी प्रकाशमणि जी से बात हुई तो उसने कहा, दादी ने कहा गुप्ता जी कुछ बड़ी बात नहीं है, आप रोज अमृत वेला तो करते हैं ना, अमृत वेला में आप अमृत वेला योग करके आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाना और फिर बाबा से कहना बाबा लिखवाओ क्या प्रोग्राम करना है। तो मैं बैठ गया और अमृत वेला फिर बाबा से पूछा, मेरा ख्याल यह था कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल था 6 बजे उठाएंगे हार्ट पेशेंट को, हार्ट पेशेंट है बेचारे तकलीफ में है, तो सुबह 6 बजे उठाएंगे आराम से, थोड़ा सा थोड़ा मेडिटेशन कराएंगे नहीं कराएंगे, थोड़ा वॉकिंग करा देंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे आप ना इनको सुबह 4:45 उठाना, तो जैसे बाबा से बात कर रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे 4:45 उठाना, अच्छा ठीक है 4:45 उठाएंगे, फिर क्या करेंगे बाबा, अच्छा इनको 1.5 घंटा मेडिटेशन कराना, फिर उसके बाद क्लास 7 से 8 क्लास जैसे अपनी क्लास होती, फिर उनके बाद ऑन ये करना, फिर ये नाश्ते में बाबा नाश्ते में क्या खिलाएंगे, सुबह सुबह अमृत वेले के बाद योग के बाद क्या देंगे, ऐसे देना नींबू पानी देना, क्या देना किस तरह से शायद डाल के देना कैसे देना, एक एक बात बाबा लिखवाता जा रहा है। फिर क्या करेंगे बाबा, फिर 7 से 8 इनको क्लास होगी, फिर उसके बाद बाबा इनको क्या करेंगे बाबा, इनके बाद वॉकिंग कराना है इनको, वॉकिंग कैसे करानी है बाबा, ये तो हार्ट के पेशेंट चलेंगे नहीं, तो बाबा जैसे लिखवा बताता जा रहा है कैसे करना है आपको, कैसे इनको पहले सोल कॉन्शियस करके और फिर कैसे चलना है ना, रूहानी सेना जैसे वो सेना चलती है ऐसे इनको चलाना है। तो मैंने कहा बाबा कोई एक्सरसाइज भी करानी है, नहीं कोई एक्सरसाइज नहीं करानी, सिर्फ उनको वॉक कराना है, सिंपल तरह से कराना है और उनको हिम्मत देके कराना है, लोग वॉकिंग नहीं करेंगे आपको हिम्मत देनी है, तो आपको हिम्मत देंगे तो ठीक है। फिर नाश्ते में क्या कराएंगे, तो बाबा ने कहा नाश्ता इतने बजे कराना, क्या देंगे बाबा मुझे तो पता नहीं क्या देना, तो बाबा ने मुझे बताया कि नाश्ते में ऐसे ऐसे करना, तो हमने नाश्ता उनको लिखते गए, हम लोग लिखते गए नाश्ते में ये देना ये करना ऐसे करना ऐसे करना, अंकुरित देना अंकुरित भी किस प्रकार का देना, उसमें क्या डालना है ना, और फिर दलिया बनाना दलिया किस तरह से बनाना, मतलब बाबा ने कहा बारीकी से बातें मुझे बता रहे हैं, और फिर मैंने सारा करके और फिर लेक्चर किस बात का होगा, फिर क्लास किस बात पे कराएंगे आप बताना, पहले लोगों को हार्ट के बारे बताना बॉडी के बारे बताना, मतलब ऐसे बाबा ने कहा कि बात छोटे बच्चे को नहीं लिखवाते ऐसे लिखवाते गए। फिर क्या करना है, एक क्लास हो गई उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, उनको उसके बाद फ्रूट खाने को देना, सीजन का फ्रूट खाने को देना, फिर ऐसे फिर एक क्लास और हो गई, फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा मैं ऐसे ऐसे बाबा ने पूरा प्रोग्राम बना दिया, 7 दिन का प्रोग्राम बना दिया। तो मैं मतलब जो है सारा प्रोग्राम बन गया, हमने शुरू किया, 5 ही पेशेंट आए थे पहले प्रोग्राम में, सिर्फ 5 है ना, हमारा दिल्ली एम्स से हमारा कोलैबोरेशन था, अहमदाबाद से कोलैबोरेशन था और एक बॉम्बे के हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन था, किसी ने एक पेशेंट भी नहीं भेजा, वो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं वहां के अगर ये आप पेशेंट हार्ट का पेशेंट वहां से आएगा ना तो रास्ते में कुछ हो गया तो
कुछ भी हो गया
आप वहां से डॉक्टर भेजो माउंट आबू से। मैंने कहा माउंट आबू डॉक्टर ही दो होते हैं, यहां से कौन से डॉक्टर लेने जाएंगे, तो कहा वो पेशेंट अहमदाबाद से इधर उधर से जो पेशेंट आए, तो प्रोग्राम हुआ, तो मतलब बाबा ने जो लिखवाया एक एक चीज, और फिर ऐसी लच्छू दादी से बात हो रही थी, वो तो कुछ दिनों के बाद की बात है, लच्छू दादी से बात, लच्छू दादी को मैंने बताया कि हम, उसने दादी, बड़ी दादी पूछती थी ना, बड़ी दादी ने जब पहले पहले ग्रुप से मिली तो मैं दादी को कहा, दादी ये तो ये पेशेंट है, ये पांच पेशेंट है, पांच उनकी युगल है। तो दादी कहती पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, इनको हार्ट पेशेंट कहते हो, इनका इनके दिल वाले हैं, दादी ने नाम रखा दिल वाले। तो दादी ने कहा ये हार्ट पेशेंट नहीं है, दिल वाले हैं, ये वो हिम्मत वाले हैं और भगवान को अपना दिल दे करके भगवान से अपना ऑपरेशन कराने वाले हैं। इन्होंने दुनिया के ऑपरेशन वाले डॉक्टर को नहीं दे समझा, इन्होंने भगवान को अपना दिल दिया है और भगवान के दिल लेके इनके ऑपरेशन करेगा। तो दादी ने मतलब उनको पहली बार सबको हिम्मत दी और उनका नाम दिल वाले रखा। हमें तो प्लानिंग नहीं थी, हम दिल वाला नाम उनका, हमारा कोई प्लान नहीं था दिल वाले कहने का उनको, ठीक है। तो भगवान, वो दादी के ही शब्द थे। और दादी एक एक पेशेंट की एंजियोग्राफी देखती थी, दादी के डॉक्टर कितने ब्लॉक है इसको, कहा दादी देखो यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, 100% यहाँ पे ऐसे ऐसे, अच्छा ये ब्लॉक खुल जाएंगे। मैंने कहा बाबा को, बाबा खोलेगा, बाबा आप सुप्रीम सर्जन है ना, बाबा ऑपरेशन करेगा। तो सचमुच में ऐसा होता था कि पांचवें दिन जब हम शाम को 6 से 7 ऑफिस, 6:30 से 7:30 8 बजे तक रखते थे, उस सेशन में उनके सूक्ष्म शरीर की सर्जरी होती थी। सूक्ष्म मतलब पहले फीस जमा कराते थे, वो बाबा की फीस बड़ी जबरदस्त थी, बाबा ने वो बताया फीस कैसी होती है ना। तो बाबा ने कहते सबको अपनी फीस जमा करने के लिए बोलना, सुबह जब फीस जमा करेगा तो उसका ऑपरेशन होगा। तो अब हम कहते फीस, बाबा क्या फीस होगी, तो बाबा कहते बच्चे उनको बोलना अपना तन अपना मन अपना धन, काला बीमार तन और काला मन और काला धन बाबा को सरेंडर करे। तो सचमुच में हम फिर सब पेशेंट को बोलते थे भाई सारा दिन में अटेंशन करके फीस जमा करना, रसीद मुझको दिखा देना, रसीद मेरे को दिखाना। तो फिर जो है ऐसे करके सचमुच में शाम को क्या जादू होता था उस सेशन में,
हमने देखा है
जादू होता था। लोग मेडिटेशन में बैठते थे सारे, अभी नए नए लोग जो कभी, जिनको ज्ञान योग पता ही नहीं था, कोर्स कराते थे पहले 3 दिन में, आत्मा परमात्मा और परमात्मा का संबंध और कैसे कैसे उसमें क्या स्थितियां होती हैं, आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति और बीज रूप स्थिति, 3 कराते थे। और उस सचमुच में उनके अंदर वंडरफुल इफेक्ट उनके अंदर होता था कि वो ऊपर गए सूक्ष्मतन, बाबा की गोद में गए, बाबा ने कैसे उनकी ऑपरेशन करता था, उनको फील हो जाता था कि उनकी आर्टरी खुल गई है, रियल में उनको फील हो जाता था कि हमारा ब्लॉकेज बाबा ने खोल दिया, सालों से जमा पड़ा था वो खुल गया, ब्लड फ्लो चालू हो गया है ना। बाबा ने क्या अलग अलग टेक्निक से उसका खोल देता था, जो 3 ब्लॉक है तीनों ब्लॉक खोल दिए, सबके सब खोल दिए। और फिर उसके बाद हम लोग कहते थे अच्छा, तो उसके बाद हम गीत पूरा होता था, उसके बाद अंदर से मुझे प्रेरणा आती थी कि उनको अब डांस कराओ वहीं पे हॉल में। तो फिर उनको हम डांस कराते थे लगभग आधा घंटा, तो जोर से डांस कराते थे, भंगड़ा भी और सब डांस कराते थे। और जो मरीज चलने में दिक्कत करते थोड़ा थोड़ा भी, तो आधा घंटा जोर से डांस करते थे। और फिर पांचवें दिन तो उनको हम 1 घंटा डांस कराते थे, मतलब ऐसा कभी कभी डांस भी ना किया हो, जंप कर करके भंगड़ा भी करते थे। किसी को मैं देखो 25 साल में किसी को भी तकलीफ भी नहीं हुई, इतने प्रोग्राम 168 प्रोग्राम हुए थे, किसी को आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुई प्रोग्राम, ये बाबा की कमाल थी। और जब अब्दुल कलाम साहब नवंबर में आए, नवंबर 98 में आए थे मिलने के लिए मरीजों से,
तो कितने थे उस समय पेशेंट
उसमें, तो उस ग्रुप में तो 8 पेशेंट थे।
अच्छा,
मतलब उस समय पहले में 5 थे, 8 थे, तरक्की हो गई थोड़ी। तो 8 पेशेंट थे, तो फॉलोअप, एक फॉलोअप ग्रुप था, फॉलोअप माने जो मतलब 6 महीने के बाद था ना, 6 महीने कर चुके थे, फॉलो कर चुके थे। तो अप्रैल में वो ग्रुप आया था, वो फिर वापस इसमें आया था, नवंबर में आया था। तो पहले एंजियोग्राफी सब करा के आते ही थे, उसके ब्लॉक्स होते थे, तो हमने उसकी क्या, तब टीएमटी हमारे पास टीएमटी मशीन लग गई थी, तब टीएमटी अपने आप ही करते थे। तो मैं 5 बजे टीएमटी शुरू करता था, तो डॉक्टर कलाम साहब मिले शाम को पेशेंट से, और फिर सुबह 5 बजे मैं टीएमटी कर रहा था अपने वहीं पे हॉस्पिटल में, माउंट आबू हॉस्पिटल में। तो वो 5:15 बजे के आसपास वो घूमते घूमते किसी भाई को साथ में लेके आ गए वहां पर ओपीडी में आ गए, जहां हम टीएमटी करते थे। तो मरीज को देख रहे हैं, उसकी पुरानी टीएमटी देख रहे हैं, अभी ये पेशेंट की टीएमटी चल रही है, जो 2 मिनट में इसकी टीएमटी पॉजिटिव हुई थी, अब वो 12 मिनट उसको हो गए थे चलते हुए ट्रेडमिल मशीन पे। कहते पूछते उसको, तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं हो रही, तुम चल रहे हो तुम्हें तकलीफ हो रही? नहीं नहीं सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं तो अभी आधा घंटा और चल सकता हूं। मशीन पे आधा घंटा और चल लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एक पूरा हो गया, फिर दूसरा टीएमटी पेशेंट शुरू किया, दूसरे का भी ऐसे ही, वो भी इतनी देर चले जा रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब वो हो गया, दो लोगों की टीएमटी हो गई, तो मेरे को डॉक्टर कलाम मेरे साथ बैठ गए चेयर साथ में, चेयर हम सोचो मैं चेयर पे बैठा था, वो एक साथ में स्टूल रखा था, वो स्टूल पे बैठ गए। सर आप चेयर पे बैठे ना? नहीं, स्टूल पे बैठ गए। कहते नहीं डॉक्टर गुप्ता टेल मी, मुझे बताइए हाउ दिस इज हैपनिंग, ये वंडर कैसे हो रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ, एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, बाईपास नहीं हुआ, पेशेंट ऐसे चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा सर दो चीज है, एक तो पवित्रता। पवित्रता क्या होती है? कहते पवित्रता क्या होती है? मैंने कहा पवित्रता, फिर उनको बताया पवित्रता क्या होती है, और दूसरा आत्मिक शक्ति। मैंने कहा सर आपने माइंड बॉडी मेडिसिन तो शुरू किया, उन्होंने उनके पूरी दिल्ली में, दिल्ली नहीं पूरी इंडिया में 30 लैब्स हैं डीआरडीओ की, जिसको लाइफ साइंसेज लैब। एक तो लैब होती है जो उसमें डीआरडीओ के लैब, जहां आर्म्स बनते हैं, मिसाइल्स बनते हैं, बॉम्ब्स बनते हैं, टैंक बनते हैं, वो उस पर रिसर्च होती है। दूसरी लाइफ साइंसेज लैब होती है, हमारे तीनों आर्मी है, आर्मी एयरफोर्स और नेवी। तो वहां पर इन सैनिकों के लिए वहां पर कैसे वो जाके दूर दूर रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, असम में, कहां नेफा में रहते हैं, कहां का रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, सियाचिन में रहते हैं, कहां का रहते हैं, उनको तकलीफें होती हैं, सालों सालों अपने घर जा नहीं पाते, बीमारियां होती हैं, तकलीफें, टेंशन होती हैं बहुत। तो उनके लिए उनको क्या मेडिटेशन के द्वारा डाइट उनको कैसे मिले ताकि हेल्दी रहें, सैर उनके व्यायाम कैसे हों ताकि वो हेल्दी रहें, उनके लिए प्लान की जाती है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सब जगह माइंड बॉडी मेडिसिन शुरू कर दिया,
माइंड बॉडी मेडिसिन
पूरे भारत में। तो मैं सर आपने माइंड बॉडी मेडिसिन शुरू किया, पर हमारे पास एक नया चीज हो रहा है, वो आत्मा,
सोल।
तो मैंने उनके आत्मा के बारे में, वो सब पेशेंट पूरे हो गए थे, उस दिन मुझे दो ही करने थे, तो फिर आत्मा के बारे में बात करते रहे, आत्मा क्या चीज है, कैसी होती है, कहां होती है, और पवित्रता के बारे में डिटेल में बात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो फिर चले गए। ओम शांति। मैं इसलिए इससे पहले ये बात पूरी करूं, इससे पहले एक बात आपको और बता देता हूं, दादी की परखने की शक्ति। बात है मई की, फरवरी में प्रोग्राम शुरू हुआ, ये बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था उन दिनों, संडे का दिन था, हम दादी से मिलने जाते थे रोज ही, मम्मी के पास दादी ने कहा हुआ था रोज मिलकर जाना, तो मिलकर मैं दादी के पास गया सुबह संडे को। दादी मुझे कहती है गुप्ता जी, मुझे चार पांच दिन से अमृत वेला योग करते ही मुझे आप संकल्प आता है, आपको मुझे बैज होता ना, बैज पहनाना है। मैं दादी आपने बैज दिया था ना मेरे को, देखो सोने का बैज दिया हो ना आपने, दूसरा था ओम शांति वाला, नहीं मुझे आपको दूसरा बैज पहनाना है। तो मैंने कहा ठीक है दादी। तो वो मुन्नी बहन को कहा बैज लेके आओ, तो बैज लेके आई, पहले बोल के रखा होगा वो लक्ष्मी नारायण का बैज, तो मेरे को दादी ना मतलब वो लक्ष्मी नारायण का बैज पहना रही थी। दादी तो बहनों का बैच है, टीचर बहनों का बैच है, मैं को टीचर बहन, मैं को टीचर हूं क्या, मैं तो स्टूडेंट हूं। दादी कहते नहीं नहीं, बाबा मुझे रोज बोलता है गुप्ता जी को टीचर का ये बैच बनाओ। तो दादी ने पहना दिया। अब मैं तो शुरू शुरू में की बात है, तो मैं तो मेरे को शर्म आती थी, मैं ऐसे कर लेता था, मैं बैच को बढ़ा था ना सामने ऐसे कर लेता था, मुझे शर्म आती थी कि मैं देखो ये कुछ कोई किसी भाई को ऐसा वाला बैच नहीं होता था, कृष्ण श्री कृष्ण वाला बैच होता था, याद है बना सी। तो मेरे को ये टीचर वाला मेरे को शर्म आती थी पहन के, तो मैं ऐसे कर लेता था, किसी के पास जाता ऐसे कर लेता, कोई तो मुझे पूछता ऐसे, भाई साहब एक भाई से निर्भय कर गया आप ऐसे क्यों कर दिया आपने, तो मैंने कहा भाई साहब ये मुझे टीचर का दादी ने पहनाया। तो दादी दादी ने टीचर कहा तो अच्छी बात है ना, इसमें तो आपको अच्छे से ऐसे ऐसे चलना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर मतलब दादी के अंदर वो था कि ना, इसे जब हम आए थे मुझे तब भी याद है, जब हम पांचवें दिन 15 अप्रैल 1995 को हम आए थे, तो 5 दिन के बाद संडे पड़ रहा था, तो संडे दादी ने हमको बुलाया, तीनों को बुलाया, बाला बहन राहुल और मैं। तो दादी ने आके अपने पास बुला करके दादी ने बाला बहन को कहा कि मतलब हमको बिठाया अपने पास कमरे में, मीटिंग रूम में। दादी कहती है गुप्ता जी अभी आप बाबा के घर में आ गए हो ना, और अभी आपका घर है, ये आपका घर है। और फिर मुन्नी बहन को कहा बोले कुछ बात, मुन्नी बहन को पहले बोल के रखा होगा, तो आप ना वो कुछ गहने मंगाए और अपने हाथ से बाला बहन को गले का पहनाया, एक कानों का दिया, हाथ में कंगन पहनाए सोने के, और कहती कहते बाबा तुम बाबा की बेटी है और बाबा की बेटी घर की बहू भी है ना। तो मतलब वो दादी को जैसे अपना बनाने का, अपना दूसरों को बना लेने का, वो तो मतलब शुरू शुरू में संकोच, मतलब संकोच होता है ना, बड़ों के पास जाने का भी संकोच होता है, तो राहुल को भी मतलब ऐसा अपना बना लिया, मतलब ये था कई बार तो होता ना शुरू शुरू में चलो हम देख के देखने में जाके थोड़ी देर भागा नहीं तो वापस चले तो पर दादी ने ऐसा बना लेना कि आपको कोई भी चीज अपने आप बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप यज्ञ से सब कुछ लो। तो दादी के अंदर वो कला थी देखने की, परखने की, समझाने की, समझने की, है ना। तो दादी कैसे कर लेती थी, जब मैं बीमार हुआ था तब भी दादी ने, मतलब मैं दादी को एक शेयर किया, मुझे हार्ट की बीमारी हुई तब 96 में, मैं शायद मैंने शेयर भी किया था पिछली मीटिंग में, तो दादी ने कहा नहीं ऐसे करो। तो फिर जो ये बात करता अब्दुल कलाम साहब वाली, तो अब्दुल कलाम साहब एक एक मरीज से मिले थे, आठों मरीज, उनकी वाइफ से भी मिले, एक एक से पूछा कुछ फायदा होता है, तुम क्या क्या करते हो, ठीक से करते हो, डॉक्टर बताता है ऐसे करते हो, इसने कहा थोड़ा कम करते हैं, तो उसको फिर बताया। फिर दिल्ली पहुंच गए डॉक्टर कलाम साहब, तो डॉक्टर कलाम साहब दिल्ली पहुंचे तो मैं समझता हूँ इस बीच में आप भाई साहब से क्वेश्चन पूछ लो,
हाँ जी, हाँ जी,
और फिर मैं बाद में इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है, तो फिर लंबा हो जाएगा।
जी 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 भाई साहब, आप अवेक बाप दादा के साथ भी आप स्टेज पे हम देखते हैं, दादियों का भी हमने देखा है कि बाप दादा का बड़ी दादी के प्रति बहुत रिगार्ड, रेस्पेक्ट, जैसे हम अनुभव करते थे कि बाप दादा का बड़ी दादी के लिए बहुत प्यार था, बहुत रेस्पेक्ट था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे यज्ञ के भी कई मसले, कई बातों में बाप दादा डायरेक्ट दादियों से बातचीत करते थे, कुछ ऐसे प्रसंग आप शेयर कर सकें कि बाप दादा ने कैसे और दादियों के बीच की कुछ बातें।
हमारी मुख्य दादियां तीन चार थी, उन शुरू से दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, और भी दादियां थी, शांतामन दादी, मनोहर दादी, थोड़ा पीछे गंगे दादी। तो बड़ी दादी का शुरू से, दादी प्रकाशमणि का शुरू से आई, उनके फादर ज्योतिषी थे, और जब वो जन्म लिया तो उन्होंने वो हाथ देखा, और दादी की मदर मैंने उनके युगल वाइफ को कह दिया कि ये मीरा है, यहां अपने घर में नहीं रहेगी, शुरू से उनको पता था। स्कूल में आई, हाई स्कूल में दादी पढ़ रही थी, मैट्रिक में, गर्मियों की छुट्टी थी, बाबा उनके फादर ने कहा कि बेटी तुम घर में बैठी है, बाबा सत्संग कराता है, जाओ। उनके फादर ने भेजा, सत्संग चल रहा था, दादी आई, दादी बैठी और दादी ट्रांस में चली गई। बाबा सत्संग पूरा कर दिए, ओम की ध्वनि पूरा कर दिए, सब उठ के चले गए, और दादी और बाबा बैठे थे, ये ट्रांस से नीचे आई तो देखा कि कोई नहीं है, बाबा बैठे हैं, ये भी धीरे से उठ के चली गई घर। जा करके अपने परिवार फादर मदर को सुनाया, और फिर दोबारा आई, फिर गई नहीं। तो तब से, शुरू से दादी यज्ञ में रही, यज्ञ को संभाला, इतनी ऑनेस्टी से संभाला, तो बाबा हमेशा दादी को बहुत रेस्पेक्ट देते थे, साकार ने भी, नहीं तो दादी बॉम्बे में रहती थी, पटना में रहती थी, कलकत्ता में रही, आबू में नहीं रखी, क्योंकि दादी और दीदी दो हंसों की जोड़ी थी। दीदी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सुडूर थी, कोई बात हो, डिसीजन लेना हो, दीदी एक मिनट में डिसीजन लेती थी। तो मम्मा के बाद, मम्मा के जाने के बाद, दीदी को, दीदी पहले दिल्ली में होती थी, बाबा ने दिल्ली से बुला लिया कि अकेले बाबा सारा यज्ञ को संभालना डिफिकल्ट, तो दीदी को बुला लिया, और दीदी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करती थी बाबा के साथ। बाबा अव्यक्त होने वाले थे, बाबा की अलग कहानी कभी सुनाएंगे, तो दीदी का बाबा से बहुत प्यार, बहुत माने बहुत। तो बाबा ने अव्यक्त होना था तो दीदी सहन कर सकती है नहीं कर सकती है, दीदी को भेज दिया, गॉड्स प्लान। दीदी को भेज दिया, भाई दीदी कुंभ मेला लगा है, संत सब आए हैं, जाकर तू वहां सेवा करो। और बाबा की आज्ञा, जी जा रहे हैं, चली गई। दादी दो दिन पहले पार्टी लेकर के आई, बेगरी पार्ट में बहुत उन्होंने मदद किया था, उन ग्रुप को लेकर के आई। दो दिन हुआ वो लोग रिफ्रेश होके पार्टी चली गई। दादी बाबा से कहती है कि बाबा, बाबा ऐसे पहले ही दादी को पूछने के पहले बाबा भेज देता था, बेटी दो दिन हो गया अभी रिफ्रेश हुई, आप जाओ सेवा करो। दादी उठाती थी थैला चल देती थी। पार्टी गई अब तभी भी बाबा कुछ बोले नहीं, तो दादी पूछती है बाबा पार्टी चली गई अब मैं जाऊं? तो बाबा ने कहा कि बेटी कुछ काम है बॉम्बे में तो जाओ, अगर जरूरी नहीं है तो रुको दो दिन। ये 16 तारीख की बात हो रही है,
16 जनवरी।
देखो कैसे भृगु ऋषि बाबा कैसे वो भाग्य को ये करता है। और कोई भी सेवा का प्लानिंग होगी तो साकार बाबा दादी को आगे रखते थे, दादी करती थी। भाषण करने जाना है, कहीं किसी को समझाने जाना है, मम्मा के बाद दादी को इन बातों में बाबा रखा। फिर बाबा 17 तारीख को बीमार थे, 18 तारीख को मुरली नहीं चलाए, फिर भी बाबा ने दादी का हाथ पकड़ करके सारा स्टोर सारी डिपार्टमेंट्स दिखाया। दादी को अंदर अंदर लगे, अरे मैं तो यहां रहने वाला नहीं हूं, रहने वाली नहीं हूं, ये कारपेंट्री मुझे क्या जरूरत है, बाबा कारपेंट्री में मेरे को लेकर के दिखा रहा है कि ये कारपेंट्री है, ये लकड़ी है, ये है वो है, अनाज का स्टोर दिखा रहा है, ये स्टोर दिखा रहा है, वो स्टोर दिखा रहा है, जवाबदारी। फिर 18 तारीख को बाबा अव्यक्त हुए, वो तो कहानियां आप लोगों ने सुना होगा, शॉर्ट कर रहा हूं। तो बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त के पहले दादी बोली कि बाबा आपकी 18 तारीख के आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो आप रेस्ट करिए, मैं जाकर के आपकी वो लिखत में सुना देती हूँ, मुरली सुना देती हूँ। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्ची जाओ। दादी सुना दिया, क्लास करा दिया सुबह का, सब लोग नाश्ते पर गए। फिर दादी मिली, उस दिन भी बाबा ने सारी जितने भी पत्र आए थे जो भी था दादी के साथ बैठ करके सारा पत्र का जवाब दिया। और शाम के टाइम में बाबा कहता है कि बेटी बाबा सुबह मुरली नहीं चलाया है तो बच्चों को संकल्प चलेगा, इसलिए सबको जल्दी भोजन करा दो और बाबा जल्दी क्लास कराएगा, रात्रि क्लास 9 बजे होता था, उस दिन 8 बजे हुआ। तो सब भोजन करके सबको बुला लिया, 8 बजे बाबा भी 8:30 आ गए, आधा घंटा मुरली चलाए, 9:15 बाबा मुरली चला करके जो बाबा का अंतिम महावाक है, दरवाजे पर खड़े होकर के बाबा ने कहा कि निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बच्चे बनना है। और बाबा छुट्टी लेता है, किसी को ये नहीं आया कि बाबा लास्ट विदाई ले रहा है। बाबा अपने रूम में चला गया, दादियां दादी साथ में गई, बाबा बैठ गया ऐसे अपने चारपाई पर पांव लटका करके। बाबा दृष्टि दे रहा है दादी के हाथ में, हाथ दे करके, और देते देते 2-3 मिनट में बाबा का हाथ ढीला हो गया। तो दादी समझी कि क्या हो रहा, बाबा का हाथ ठंडा हो गया, ढीला हो गया, और बाबा नयन खुली है, बाबा अव्यक्त हो गया। फिर भाई लोग थे, मतलब उस समय के दादी अनुभव सुनाते, इतना पावर बाबा ने दादी को दे दिया, जैसे सारा पावर दे दिया। जैसे शंकराचार्य को सुनाते हैं कि शंकराचार्य जी छोटे थे तो सन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए, और अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने भेजा कि नहीं तुम फलाने गुरु के पास जाओ। उन्होंने सारी अपनी सिद्धियां उनके सिर पर हाथ रख दिया और उनको सिद्ध पुरुष बना दिया। तो एक व्यक्ति मनुष्य किसी को अपनी शक्तियां दे सकता है तो परमात्मा जिसके तन में आया है दादी को पूरी शक्तियों से संपन्न कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि बाबा के जाने के बाद दादी अकेले सबको फोन किया, लोगों को फोन गया तो दादी को कहते हैं कि आप मजाक करती है, दादियां थी तो जैसे आप लोग अपने लेवल में तो बात करते हैं, आप तो बॉम्बे में रहती है और बाबा के लिए ऐसे क्यों बात करती है कि बाबा चला गया। तो नहीं, मैं बॉम्बे से आबू में आई हूं, आबू से बात कर रही हूं, मैं रियल बात कर रही हूं, बाबा चले गए, अव्यक्त हो गए। इस तरह की सिचुएशन को दादी ने संभाला। सब बच्चे आए, 3 दिन बाबा को रखा गया। तो कहने का भाव है कि दादी के प्रति बाबा को शुरू से ये था, और अव्यक्त बाबा भी कई बार दादी कुछ भी छोटा सा काम होता था फट से गुलजार दादी को बोलती थी, गुल, बड़ा प्यार था दादियों का आपस में, गुल अब जाओ बाबा को संदेश दे करके आओ, दादी चली जाती थी। कभी ये थोड़ा बड़ा काम हुआ, बाबा को बुला लो, जो बाबा के कमरे में दीदी दादी गुलजार दादी बीच में बाबा के पास चली गई, बाबा उनमें आए हैं, कारोबार हो रहा है। दादी परफेक्ट, दीदी परफेक्ट। कुछ काम करना होता था बाबा को बुला करके पूछ करके करते थे। आज के डेट में हम देख रहे हैं कोई नहीं है, बाबा अपनी प्रेरणा से सब बच्चों को दादी समान बना करके काम करा रहा है। हो रहा है यज्ञ क्या या नहीं हो रहा है, भट्टी चल रही है नहीं चल रही है, कैसे चल रही, बाबा कर रहा है। तो इसलिए हमने कई बार देखा है छोटी छोटी बातों को बाबा दादी को रिस्पेक्ट देते थे, इतना प्यार करते थे। दादी के एक बार तबीयत खराब हो गई, बाबा आए थे, बाबा ऐसे खिसक करके और दादी को अपने पास बैठा लिए, यहां बैठो उधर नहीं बैठो, इतना बाबा दादी को रिस्पेक्ट देते थे। तो कहने का भाव कि बाप दादी भी इतना ही हड्डी हड्डी यज्ञ की सेवा किया। एक बार की बात है, दादी को बुखार था, बुखार उतर गया था, 99 था, तो दादी नाश्ता करके यीशु दादी के ऑफिस में बैठी थी। मैं वहां गया, तब तक हमारे डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तब तक कोई डॉक्टर नहीं होते थे, हॉस्पिटल का नाम निशान नहीं था। हॉस्पिटल का तो नाम निशान तब बना जब निर्भयर भाई को बाईपास सर्जरी हुई, फिर संकल्प चला कि नहीं यहां हॉस्पिटल होनी चाहिए, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। तो दादी बैठी थी, हम बोला कि दादी थोड़ा आप रेस्ट कर लो, तो दादी क्या बोलती है, यीशु देखो बनारसी हमारी आदत बिगाड़ रहा है। तो यीशु दादी बोलते हैं, नहीं दादी ये आदत बिगाड़ नहीं रहा है, वो कमजोरी है, थोड़ा बुखार है, अभी अभी टूटा है तो नाश्ता कर लिया, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगा ना। मतलब कि हड्डी सेवा देनी है, बुखार है, कमर में दर्द दादी को चुक पड़ जाता था, दादी वो मोफलर बांध करके मुरली सुनाने आती थी, हिलती नहीं थी मुरली सुनाने आती थी, हिलती नहीं थी मीटिंग करती थी, कोई कारोबार होता था दादी बैठी आ जाओ अपने रूम में बुला लेती थी, और इतना तकलीफ होता था कि ऑफिस में नहीं जा पाती थी, पैदल चल करके यीशु दादी के ऑफिस में जाना होता था, बोली कि नहीं दादी के रूम में ही आ जाओ। तो कहने का भाव ये है कि दादी ने इतना सेक्रीफाई किया, और मैं क्या बताऊं, छोटे छोटे लोगों के साथ दादी एडजस्ट किया, कोई मान लीजिए अभी नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, माने ऐसे दादी के संग में लोग आए, लेकिन दादी ने कभी उनको ये नहीं कहा, ठीक है जैसे थे वैसे चलाया, उनके साथ चली, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उनको ठीक कर सकती थी, नहीं ठीक है, इनको जो चाहिए। एक भाई है, नाम नहीं लेते हैं, भाई उन्हें दादी को डांटा, अच्छी तरह डांटा और डांट करके चला गया। दादी को असर नहीं, कुछ जैसे कोई कुछ कहा नहीं। और शाम के टाइम में उसको बुला के, भैया भाई इधर आओ, चाय पिया है, दादी के साथ चाय पीना है। सोचो इस दुनिया के कोई मनुष्य होगा नहीं। वो वतन की थी दादी हमारी, कुछ नहीं, किसी के प्रति नहीं। हम लोग कभी पूछते हैं, दादी इतना आप मीटिंग करती है, सारा दिन कारोबार सुनती रहती है, नींद आती है? अरे भाई मीटिंग में बैठी हूँ, सुन लिया, मीटिंग से जाती हूँ, बाबा ये तुम्हारा काम, तुम जानो, अब मैं दादी इधर चली। हल्की रहती थी, ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस मीटिंग हुआ, दो दिन दादी का मूड ऑफ हो, चार घंटा सिर भारी हो, एक मिनट भी दादी का सिर भारी नहीं होता था, मूड ऑफ तो कह ही नहीं सकते हैं, समझे ना। इस तरह से दादी हल्की होकर के जग चलाई, छोटे से छोटे मिल बन करके चलती थी, बड़े से बड़े बन करके चलती थी, सबके दिल लेती थी। मैं क्या बताऊं भाई साहब, आ गया
जी। एक बात बता
अच्छा, मैं क्या बताऊं, इतनी बड़ी दादी, बड़े बड़े संत आए थे, पहली बार कॉन्फ्रेंस हुआ था, जगदीश भाई पसीना पसीना हो रहे थे, एक महात्मा उठ करके नाराज होकर चला गया, क्योंकि उसका गद्दी थोड़ा नीचे था, दादी वो चला गया, जगदीश भाई पीछे पीछे भाग के गए, वो आया नहीं, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत बिगड़ गई है, ये है वो है, दादी को उन्होंने बताया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ये है। दादी गई, स्वामी जी दरवाजा तो बंद था, स्वामी जी आपकी छोटी बहन आई है, दरवाजा खोलिए, दादी की आवाज सुनकर खोला, स्वामी जी गलती हो गई है, माफ करिए। नहीं दादी गलती कुछ नहीं है, तो चलिए, दादी का हाथ पकड़ करके आ गया स्टेज पर, झुकती थी, ऐसा नहीं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूं तो वो नाराज हो गया तो होने दो, नहीं, बाबा के घर में कोई नाराज न हो। दादी लेके आ गई, तो कहने का भाव है, दादी के मन में किसी के प्रति नहीं। दादी रेस्ट करने जा रही है, मुन्नी बहन हाथ पकड़ कर ले जा रही है, तीन सीढ़ी होता है हिस्ट्री हॉल के, जो दादी अपने बरामदे में जाए, वहां सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है, सामने मेन गेट है, वहां दादी की नजर गई, पार्टी आ रही है, मुन्नी तुम चल हम आ रही हो, अरे दादी क्या हो गया, अतु नहीं दो मिनट, अतु मैं शाम को मिलाऊंगी, मैं देख लिया पार्टी आ रही है, अतु दो मिनट प्लीज चलो, उसको भेज देती थी और उनको हाथ हिला देती थी, मुस्कुरा देती थी, पार्टी का थकावट दूर हो गया। दादी में जादू था, जादूगर नहीं थी, लेकिन जादू बाबा ने भर दिया था, उनकी नयन ऐसी थी, ऐसे मुस्कुरा करके किसी को दृष्टि देती थी, उनका दिल पिघल जाता था। डॉक्टर साहब बोलते थे कि दिल खुल जाता था, हम तो दिल पिघलते हुए देखा।
वाह वाह वाह, दिल तो करता है, सुनते रहे बहुत खैर। और ये तो चलिए आप तीसरा सत्र चल रहा है शायद, हम लोग पहले भी दो बार, तो अभी चौथे सत्र में भी आपकी बहुत अच्छी बातें हम सुनेंगे, और बहुत सभी देखिए एकदम सबकी दिल पिघल गई है अभी जो भी हॉल में है। थैंक यू भाई साहब। अब सतीश गुप्ता जी आप बात पूरी करेंगे जो
जी। तो जैसे मैं बात कर रहा था डॉक्टर कलाम साहब की, डॉक्टर कलाम साहब मिल के गए, तो जब वो दिल्ली पहुंचे तो मुझे फरवरी मास में, नवम्बर में आए थे, फरवरी मास के बिगनिंग में मुझे फोन आया, मंडे का दिन था, मैं ओपीडी में था, मुझे कहा डॉक्टर गुप्ता आप हमारे यहाँ है, कॉन्फ्रेंस होने वाली अगले मंडे को है, और उसमें सारे जो भारत के जितने भी डीआरडीओ के लैब्स हैं ना, हमारे 30 लैब्स हैं, उनके सारे डायरेक्टर्स आने वाले हैं, और उसमें वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, एक ही टेबल के आसपास माइक हर एक के पास होता है, उसमें मैं चाहता हूँ आप आकर के, जो आपने उस दिन मुझे बताया ना सोल कनेक्शन, सोल माइंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर बताइए, दो घंटे आपको देंगे 11 से 1 बजे मंडे को, तो आप आएंगे नेक्स्ट मंडे आएंगे क्या? तो मैंने तो उसमें तो पेशेंट देख रहा था, मैंने कहा हाँ सर मैं आ जाऊंगा। मैंने बोल तो दिया, ओपीडी में का टाइम था, पेशेंट देख रहा था, बिजी था। और फिर मैं लंच टाइम हुआ ना, डेढ़ बजा लगभग लंच ओपीडी पूरी हुई, तो मेरे को डर लगना शुरू हो गया। अब डर क्यों लगना शुरू हुआ? क्योंकि जो 30 लैब्स के डायरेक्टर थे, एक एक लैब में 1500 साइंटिस्ट होते हैं,
एक लैब में 1500
इतनी बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, और वो सारे साइंटिस्ट हार्डकोर साइंटिस्ट होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले, है ना। तो वो जो है उसको मैं कहूं आत्मा है, आत्मा कैसे शरीर को नरिश कर रही है, मन के बारे में ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं होती दुनिया में, तो अगर मैं बात करूं तो कहेंगे पागल, ये हमारा 2 घंटा खराब कर रहा है। तो मेरे को बहुत डर लगने लगा शुरू हो गया। शाम के टाइम मेडिटेशन होता है ना 6:30-7:30, तो मैं जाके मेडिटेशन में बैठ गया, मतलब शाम को आके बैठ गया मेडिटेशन में। और मेडिटेशन में जाके बैठा तो मेरे को बाबा को यही कि मैंने बोला था, क्योंकि मेरे को कई समय से, जब मेरे को 91 में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, और उसके बाद भी मुझे बाबा से, जब मेरे को हार्ट की बीमारी हुई उसमें बाबा ने ठीक किया, तो मुझे बाबा से बात करनी आ गई थी। उससे पहले बात करनी नहीं आती 91 से पहले, तो फिर बाबा से बात करनी आ गई थी। तो मैं जैसे योग में गया और बाबा के पास पहुंच गया, और बाबा को जाके मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे, मेरे तो मेरे मुख से तो हाँ निकल गया आपसे बगैर पूछे। नॉर्मली मैं बाबा से हर काम पूछ के करता था, तो बाबा मैंने तो हाँ निकल के, हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं शायद उनके प्रभाव में आ गया डॉक्टर कलाम साहब के साथ, तो मैं तो हाँ कर दिया। अब मैं क्या जाके बोलूंगा, 2 घंटा क्या बोलूंगा, मेरे को 2 घंटा का आधा घंटा भी नहीं बोलना नहीं आएगा। मेरे को पता आत्मा के बारे में पता है 3 शक्तियां और 7 गुण, मन के बारे थोड़ा सा पता है संकल्प शक्ति, और शरीर के तो बारे बहुत पता है, वो तो उनको भी पता है,
उनको भी पता है,
तो वो मैं क्या बताऊंगा उनको। तो बाबा मुझे बताओ ना कि कैसे, हाँ बच्चे क्या पूछना पूछो। तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा
बात कैसे करते, मैंने ट्रांसलेट से आवाज आती,
ट्रांसलेट से नहीं मतलब संकल्पों से बातचीत होती, वो मैं पहले अनुभव कर चुका था बीमारी के दौरान भी, और 91 में जब मेरी हार्ट बंद हुआ तब भी बात कर चुका था, तो उसका मुझे अनुभव हो चुका था कैसे बाबा से बात करते, संकल्पों के द्वारा और इशारों के द्वारा बात होती, भावना के द्वारा। तो मैंने कहा हाँ बाबा बच्चे पूछो, ऐसे जैसे बाबा कहते ना, ऐसे आमने सामने बात होती ऐसे, बच्चे पूछो। तो मैंने बहुत सारी बातें शुरू की पूछनी कि आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, कैसे जीन्स कैसे बदलते हैं, जीन्स से कैसे बीमारियां होती है, किसी बच्चे को जन्म से ही चेक होता है हार्ट में, किसी के वाल्व खराब हो जाते 10 साल की उम्र में वाल्व खराब हो जाते हैं, किसी के आर्टरीज 30 साल में ब्लॉक हो जाती हैं, कि 70 साल में ब्लॉक नहीं होती, कि 70 साल में ब्लॉक होती तीनों किंतु कुछ भी तकलीफ नहीं होती, किसी को एक 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है तो उसकी आर्टरीज मतलब उसको बहुत हार्ट अटैक, पंपिंग पावर कम हो जाती है, ऐसे बहुत सारी बातें जीन्स के बारे में, और आत्मा कैसे गर्भ में कहती है, कैसे शरीर डेवलप होता है, बहुत सारी बातें पूछी। तो बाबा ने मुझे सारी बातें बतानी शुरू की, बताई सारी बहुत सारी बातें, और भी मैं पूछता रहा, बाबा बताते गए, मेडिसिन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसी कनेक्शन में ना सारी बातें मैंने पूछी, कैसे आत्मा के साथ एनर्जी कैसे काम करती है, कहाँ जाती है एनर्जी, कैसे वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में, बॉडी कैसे डेवलप होती है, वो सारी बातें, किसी डिफेक्ट क्यों होता है, किसी के लीवर खराब क्यों होता है, किसका पेनक्रियास खराब क्यों होता है, डायबिटीज कैसे हो जाती है, किसको जल्दी उम्र में, किसको बचपन से 8-6 साल की उम्र में डायबिटीज हो, किसको 50 साल में डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर किसी को बहुत जल्दी हो, किसको कैसे होता है, कुछ बातें तो हमको पता थी मेडिकल साइंस के हिसाब से, जो बातें नहीं पता थी मैंने पूछी। तो बाबा ने सब बताया। तो जब मेरा योग पूरा हुआ तो मैं आया घर पे, घर पे आते ही मैंने, मेरे हमेशा पैड रहता है, पैड बेड साइड में ना पैड रहता है, उस पर कागज रहते हैं A4 साइज के पेपर, मैंने आते ही 6 पेज भर दिए, वो जो मैंने बाबा से जो लिखा था ना, जो बाबा ने सुनाया बताया मेरे को, मैं लिख दिया। शाम हुई, सोमवार की शाम को तो हुआ ना, सुबह फिर अमृत वेले मैं फिर बाबा के पास गया, तो अमृत वेले योग लगा, बाबा से पूछा बाबा मुझे ये बातें और बताओ। तो बाबा कहता है बच्चे तुमने जो लिखा ना कल शाम को उसमें आधा गलत लिखा। मैंने कहा बाबा गलत तो नहीं बाबा, मैंने तो जो आपने वही लिखा। नहीं बच्चे जो आप पढ़ते हो ना अपनी किताबों में, हैरिसन में पढ़ते हो ना, हमारी किताब होती है हैरिसन। बाबा मैंने कहा हैरिसन तो हमारी बाइबल है। तो कहते नहीं बच्चे वो इंसान ने लिखी है, उसको खाली बॉडी का पता है, उसको क्या पता आत्मा क्या होती है, तो उसने जो लिखा है वो गलत लिखा है, तुम सिर्फ जो मैं कहता हूं वो लिखो, वो उसके अलावा कुछ मत लिखना। तो मैंने कहा अच्छा बाबा वो तो मैं कर दूंगा जाके लिख लूंगा, आप मुझे बताओ ना और बातें, मेरे को टाइम भी तो कम है, स्लाइड भी बनानी मेरे को, ऐसे आम बात नहीं करते बच्चे बाप से बात कर रहे होते, तो मैं ऐसे बात कर रहा हूं। तो बाबा कहते नहीं पहले वो ठीक करना फिर बताऊंगा। तो मैं वापस आके मैंने दोबारा लिख दिया, सारा रीराइट किया, ध्यान रखा कि मैं कुछ और बातें ना लिखूं, किताबों की बातें ना लिखूं। अब शाम को फिर योग में, मंगलवार की शाम फिर योग में बैठा, तो फिर बैठा बाबा के पास गया, तो बाबा से बात हुई, तो बाबा ने कहा बच्चे अभी भी उसमें गलतियां हैं, वो गलत है, उसमें कुछ बातें मिक्स हैं। तो मैंने कहा बाबा वो तो सारी बातें वही लिखी जो आपने बताई थी, नहीं बच्चे जो आपने जो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हो ना तो उसकी बातें लिख दी हैं। तो मैंने कहा बाबा कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, विदेशों के आते हैं, बड़े रिसर्च की होती है, प्राइमरी रिसर्च की होती है, उनको तो इतने प्राइज मिले होते हैं, नोबेल प्राइज जैसे मिले होते हैं, उनकी बातें होती हैं। नहीं बच्चे वो भी तो आपके यहाँ कहावत है ना, चार चार अंधे मिलके हाथी को जो पकड़ा, खंबा पकड़ा, पैर पकड़ा खंबा है, सूंड पकड़ी तो किसी ने कुछ कहा, कान पकड़ा तो किसी ने कहा खंबा, पंखा है, मूंछ पकड़ी तो किसी ने और कुछ कहा। अब चार हाथी मिलके, अगर चार वो अंधे मिलके कॉन्फ्रेंस करें तो क्या हाथी बना सकते हैं क्या? तो बाबा ने मुझे वो एग्जाम्पल दिया,
आंख नहीं है किसी ने।
तो मैंने कहा हाँ बाबा ठीक है। तो मैंने कहा बाबा भी बता दो कुछ बातें और बता दो, ये बातें बता दो। नहीं नहीं बच्चे अभी फिर ठीक करो, दोबारा जाके लिखो फिर बताऊंगा। अब पूरा मंगलवार निकल गया मेरा, अभी जो है फिर मंडे को मैं बैठा, कहते बाबा कहते हैं हाँ अब ठीक है। फिर बाबा ने बताना शुरू किया, मंगल बुधवार की सुबह, बुधवार की शाम, बृहस्पतिवार की सुबह, शाम, शुक्रवार की सुबह, शुक्रवार की शाम, शनिवार की सुबह, लगभग मेरी सारी बातें पूरी हो गई थी जो भी मुझे पूछनी थी ना उसके कनेक्शन में। मैं नोट्स बना के रखे थे क्या क्या पूछना है बाबा से, तो मैं तो नोट्स से लेके तो ऊपर नहीं गया था, तो दिमाग में था। तो मैं फिर बाबा से पूछा तो बाबा ने बता दी सारी बातें। फिर मैंने स्लाइड्स बनाई, संडे शाम को गए जाना था ट्रेन से, मंडे सुबह पहुंचा और मैंने 11 बजे भाषण शुरू किया, सवा एक बजे पूरा हुआ। और फिर उसके बाद जब डॉक्टर कलाम साहब ने कहा नहीं अभी आप सबसे बात कर लो, सबको कहा भी आप डॉक्टर गुप्ता ने जो बोला आपको समझ में आया, तो सबको सबको कमेंट करने, कमेंट या तो कमेंट करो या क्वेश्चन पूछो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबका यही था कि भाई दिस इज सो न्यू एंड सो वंडरफुल कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पूछ सकते, बाकी दिस इज सुपर्ब एक्सीलेंट। तो सबने मतलब इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर ये भाषण, ये जो चीज जो मैंने सुना वहां पर सुनाई थी, उसके बाद दिल्ली एम्स में और जहां भी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल भारत के हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, सब जगह मैं लगभग मैं काफी जगह गया और वहां सब जगह रखा, विदेशों में भी जाके मैंने इस पे डॉक्टर्स की गैदरिंग में और भी साइंटिस्ट की गैदरिंग में भाषण दिया। और इवन फिर उसके बाद जहां भी जितने बड़े बड़े लोग भी आए, कॉन्फ्रेंसेज जितनी हुई, बहुत सारी माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंसेज भी हुई, वर्ल्ड कांग्रेस कार्डियोलॉजी की भी हुई, सब जगह मैंने इसके ऊपर बोला कि तू आज तक उस बात को होगा कितने साल, 23 साल हो गए में इस जो कॉन्सेप्ट है ना सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, इसी को थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं, सोल स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर। आज तक किसी व्यक्ति ने, WHO को मैंने भेजा इसका बना करके,
बिल्कुल
आज तक किसी व्यक्ति ने इस पे क्वेश्चन नहीं किया कि ये चीज इसमें कोई क्वेश्चन है। और ये जो सारा कॉन्सेप्ट बना ना, जो आत्मा की सात एनर्जी कैसे शरीर को नरिश करती है मन के द्वारा, माइंड माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, माइंड के चार एस्पेक्ट होते हैं। फिर बाबा की मुरली में वो हमें सुनने को मिला, तो बाबा की चारों बातें जैसे सारी सारी बातें बाबा ने फिर वो मेरे को उसमें अनुभव बताई, कैसे आत्मा गर्भ में जाती, कैसे शरीर डेवलप होता, वो सारी बातें मैं लिख के भेजी थी फिर ना WHO को भी। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट बना, कैसे आत्मा की ज्ञान की शक्ति से आत्मा ब्रेन को नरिश करती है, इम्यूनिटी पवित्रता से कैसे हमारी इम्यूनिटी और पांचों सेंसेस नरिश होती हैं, शांति से लंग्स नरिश होते हैं, है ना, प्रेम से हार्ट नरिश होता है, और प्रेम कैसे एनर्जी, हार्ट प्रेम के द्वारा हार्ट को कैसे एनर्जी क्या है, शांति क्या है, अभी तक क्लियर नहीं था हमारे यहां। वैसे बोलते हैं हम शांति, ओम शांति, पर शांति क्या चीज है, प्रेम क्या चीज है, खुशी क्या चीज है, वो हमारे यहां ऐसे कंक्रीट बताया नहीं जाता है कि तो शांति क्या है, प्रेम क्या है, खुशी क्या है, आनंद क्या है, वो सारी बातें बाबा ने खोल के बताई मेरे को, वो सारी बातें मैंने शेयर की। तो काफी साइंटिस्ट ने कहा हम भी इतनी शांति शांति बातें करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, आज हमको समझ में आया कि शांति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, खुशी क्या होती है, आनंद क्या होता है, और शक्तियां क्या होती है, आठों शक्तियां क्या है, और कैसे उसके से हमारी हड्डियां ज्वाइंट्स नरिश होते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो बाबा ने एक बात को खोल के समझाया और तब से फिर खाली हार्ट के लिए तो एक नाम प्रोजेक्ट का हार्ट था, किंतु उसके बाद फिर कैसे, क्योंकि कोई बीमारियां भी, चाहे इवन किसी लोगों को दूसरी बीमारियां भी थी, दिमाग की बीमारियां थी, कई बार ऐसे पेशेंट को साथ वालों को बीमारियां होती थी वो भी ठीक हो जाती थी, है ना, ब्लड प्रेशर डायबिटीज तो ठीक होती थी, कोलेस्ट्रॉल और ये एसिडिटी अस्थमा कैंसर भी लोगों के ठीक होते थे, कैसे बाबा ने सब कुछ ठीक करा के बताया, तो ये बाबा की कमाल थी। तो बाबा ने कैसे इसका, मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चाहे खान पान की बात हो, चाहे सैर की बात हो, चाहे मेन मेन राजयोग को यूज कर राजयोग का प्रयोग करना, बाबा ने इसमें इसलिए इतने साल हो गए हमें इसमें, इसलिए मैंने आज तक भी कभी कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं डाली, मतलब पता नहीं इतने सालों से इस प्रोग्राम में कोई अपने मन की बात डाल दी हो, किसी किताब से पढ़ के बात डाली हो, कभी नहीं डाली। मतलब वो प्रोग्राम एस सच जो बाबा का बनाया हुआ था, इवन गीत तक भी बाबा के वही, अभी तक वो गीत कितने पुराने सिलेक्ट किए हुए, वही गीत बजते हैं अभी भी, वो गीत पहले गीत बाद में गीत वही गीत बजते रहे। तो मतलब बाबा ने जो बनाया ना उसमें, जो श्रीमत में मनमत अगर हम मिक्स करते हैं, परमत मिक्स करते हैं, तो उसमें वो रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि अगर हम बाबा ने एक एग्जाम्पल देखकर मैं बताया था उस समय कि 100 ml अगर दूध लेते हो आप, एक पाव दूध लेते हो, उसमें 5 ml भी जहर मिला देते हो ना, तो वो जहर दूध से ताकत नहीं मिलती, कमजोरी आती है। इसलिए जो बाबा की जो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, इसी में बाबा ने मुझे 5वें दिन ये बात बताई थी शुक्रवार को शाम को, कि अगर इसमें कुछ भी अगर आप कुछ भी मिक्स करोगे ना, इसमें ताकत नहीं रहेगी। श्रीमत में मनमत या परमत कुछ भी मिक्स करोगे ना, तो ताकत जो ओरिजिनल ताकत है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट सिंपल नहीं होते हैं, अधिकतर VIP होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, टाइप ए होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, है ना, इमोशनल भी बहुत होते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो नुकसान आपको होगा। उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, बाबा ने ये बोला था, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इसलिए ध्यान रखना, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा इसके द्वारा बाबा का बहुत बड़ा कार्य होगा, तो बाबा का अगर जरा भी श्रीमत मनमत मिक्स की या खाने पीने में कोई बात में भी की, तो बाबा इसका जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसलिए हमें भी जीवन में देखना चाहिए, अगर सचमुच हम योग का प्रयोग करना चाहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, कि तो हम जरा भी मनमत परमत मिक्स करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्यूरेट चलें अगर हम, तो बाबा सदा हमारे साथ है, बाबा सर्जन भी है, हर संबंध का सुख हमें दे सकता है, कभी हम अकेले हो ही नहीं सकते।
वाह, थैंक यू आप सभी, हम सभी बाबा के और करीब पहुंच गए, बाबा के प्रति प्यार और निश्चय और बढ़ोतरी सबकी हुई, तो वंडरफुल बाबा का और वंडरफुल आप हमारे दोनों भाइयों का, कि किस तरह से बाबा टच करा के सारा कार्य करत, माना कार्य हुआ पड़ा है, माना वो होना ही
है। दादी दादी तो कई बार क्या कहते थे, जैसे दादी को पता लगता ना दिल वाले पेशेंट आए हैं, तो दादी कहती, जैसे मैं पहले दिन दादी को जाके बोलता, दादी ऐसे ऐसे पेशेंट आए, अच्छा दादी को कब मिलना है, तो मैंने कहा दादी जब 5वें दिन मिलाएंगे ना आपको, नहीं कल ही मिला दो। तो कई बार तो मैं दादी को अगले दिन ही मिलाने ले आता था पांडव भवन में, फिर दादी फिर पूरा होएगा, दादी कहीं फिर अब मिला के ला, दादी दो बार भी मिलती थी उनसे, इतना प्यार था दादी को, एक एक दिन एक एक पेशेंट से इतना प्यार होता था, इंडिविजुअली भाई कैसे है, अभी कैसे लग रहा है, पहले कैसा था, अभी क्या फायदा लग रहा है, दादी ऐसे सब हुआ ऐसे, कल मैं 1 घंटा डांस किया दादी को, मतलब लोग इतना दादी को, वो दादी भी इतना खुश होती थी, एक एक से बहुत खुश होती थी, तो दादी को मतलब पर्सनली हर एक से बहुत प्यार था, बहुत मतलब एक को इतने लोग खुश होकर जाते थे, बात नहीं पूछो।
थैंक यू सो मच भाई साहब, फिर आगे हम अगले सत्र में इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक्स, भरपूर हुए सभी, थैंक यू।